ये आकाशवाणी दिल्ली है। भाजपा सांसद रामबीर सिंह बिथोड़े ने मुंबई बड़ौदा हाईवे को जोड़ने वाले 12 लेन के राष्ट्रीय राजमार्ग को हरी झंडी दिखाकर जनता को समर्पित किया। दिल्ली में वायु प्रदूषण को लेकर सरकार ने शीतकालीन एक्शन प्लान के तहत इलेक्ट्रिक हीटर वितरण अभियान शुरू किया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने उच्च और तकनीकी शिक्षा पर नई दिल्ली में एक राष्ट्रीय कार्यशाला को संबोधित किया। लोक प्रसारण सेवा दिवस के अवसर पर नई दिल्ली के आकाशवाणी भवन में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया और दिल्ली हाट में शिल्प समागम मेले की शुरुआत हुई। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं निखिल कुमार। दक्षिणी दिल्ली से भाजपा सांसद रामबीर सिंह बिथोड़े ने आज बदरपुर विधानसभा क्षेत्र में मीठापुर चौक से मुंबई बड़ौदा हाईवे को जोड़ने वाले 12 लेन के राष्ट्रीय राजमार्ग को हरी झंडी दिखाकर जनता को समर्पित किया। मीठापुर चौक पर इस हाईवे पर चढ़ने और उतरने के लिए एग्जिट तथा एंट्री प्वाइंट दिया गया है। उन्होंने कहा कि हरियाणा के सोहना जाने के लिए अब तक 2.5 घंटे लगते थे, लेकिन अब 25 मिनट में ही पहुंच जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि ये हाईवे दक्षिण दिल्ली के ट्रैफिक जाम को खत्म करने की दिशा में एक बड़ा कदम है और आने वाले दिनों में केंद्र सरकार की इस सौगात से पूरे दक्षिणी दिल्ली में जाम से मुक्ति मिल जाएगी। श्री बिथोड़े ने राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए क्षेत्र की जनता की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी का आभार व्यक्त किया। राजधानी में वायु गुणवत्ता के स्तर में आज भी कोई सुधार नहीं आया। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार आज शाम 4 बजे तक वायु गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में रही और वायु गुणवत्ता सूचकांक 334 दर्ज किया गया। प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए नई दिल्ली नगर पालिका परिषद राजधानी के विभिन्न क्षेत्रों में पानी का छिड़काव कर रही है। वहीं दिल्ली में वायु प्रदूषण कम करने के लिए दिल्ली सरकार ने रात्रि पारी में काम करने वाले सुरक्षा कर्मियों को शीतकालीन एक्शन प्लान के तहत इलेक्ट्रिक हीटर वितरित करने का अभियान आज शुरू किया है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि सभी सरकारी विभागों को आदेश दिया गया है कि वे भी अपने अपने यहाँ रात्रि शिफ्ट में काम करने वाले कर्मचारियों को हीटर उपलब्ध करवाएं। श्री राय ने कहा कि दिल्ली की जनता के सहयोग से और सरकार द्वारा उठाए गए कदम से दिल्ली में प्रदूषण को कम करने के लिए जितने भी अभियान चलाए जा रहे हैं उनमें सफलता मिल रही है।
दिल्ली के सभी सरकारी विभागों में जहां पर भी नाइट ड्यूटी में वर्कर काम करते हैं उन सब लोगों को अपने अपने विभाग में हीटर प्रोवाइड करना है, जिससे कि वो रात में ठंड बढ़ने पर जो आग जलाते हैं उसको न जलाएं। इसके माध्यम से हमारी कोशिश ये है कि दिल्ली के चारों तरफ जो छोटे जगहों पर ये जो बायोमास बर्निंग होती है उसको पिछले साल की तुलना में इस बार और ज्यादा कंट्रोल किया जाए।
पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए बताया कि सड़कों पर 200 मोबाइल एंटी स्मॉग गन से पानी के छिड़काव का अभियान शुरू किया गया है। उन्होंने बताया कि खुले में सर्दियों में आग जलाने से भी प्रदूषण बढ़ता है, इसलिए सरकार द्वारा 6 नवंबर से 1 महीने के लिए दिल्ली में एंटी ओपन बर्निंग अभियान भी शुरू किया गया है। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा के नेतृत्व वाले एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने आज दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना से मुलाकात की और 2 पावर डिस्कॉम्स से जुड़े कथित घोटाले पर कार्रवाई करने की मांग की है। श्री सचदेवा ने ज्ञापन पत्र सौंपने के बाद मीडिया के साथ बातचीत में आरोप लगाया कि पावर डिस्कॉम्स के कामकाज में अनियमितता है और दिल्ली सरकार बिजली कंपनियों से भुगतान नहीं ले रही है। उन्होंने बताया कि दिल्ली के 3 पावर डिस्कॉम्स बिजली खरीदते और बेचते हैं, लेकिन सिर्फ 1 लाभ है, बाकी बची 2 डिस्कॉम्स घाटे में है जिन्होंने अपना बकाया भुगतान नहीं किया है, जिसकी जांच होनी चाहिए। श्री सचदेवा ने सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा कि ये दिल्ली सरकार और पावर कंपनियों की मिलीभगत की ओर इशारा करता है।
3 कंपनियां हैं दिल्ली में जो बिजली की सप्लाई करती है, एक ही टर्म कंडीशन पे करती है, एक ही जगह से बिजली लेती और एक ही माध्यम से बिजली को डिलीवर करती है। उसके बावजूद क्या कारण है कि BSES और GPYL ये 21,000 का तो घाटा दिखाते हैं और 26,000 करोड़ रुपया इन्होंने दिल्ली सरकार की 2 कंपनियां प्रगति पावर और इंद्रप्रस्थ उनको देना है। आप बिजली ले रहे हैं लेकिन उनको पैसा नहीं दे रहे हैं, तो मोटा मोटा ये 50,000 करोड़ के लगभग का मामला है। बहुत मोटा इन दोनों कंपनियों को लाभ पहुंचाने के चक्कर में आम आदमी पार्टी के नेताओं ने मोटा किकबैक लिया है।
नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार और BSES पावर डिस्कॉम्स भागीदार हैं, इसलिए राज्य सरकार अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकती। इस प्रतिनिधिमंडल में शामिल भाजपा सांसद रामवीर सिंह मिधोड़ी, योगेंद्र चंदोलिया, कमलजीत सहरावत और प्रवीण खंडेलवाल ने आरोप लगाए कि पहले केजरीवाल सरकार और अब आतिशी सरकार ने पावर डिस्कॉम्स तथा दिल्ली जल बोर्ड के राजस्व को नुकसान पहुंचाया है। दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता ने आज राजधानी के दिलशाद गार्डन स्थित गुरु तेग बहादुर अस्पताल का दौरा किया। उन्होंने दिल्ली सरकार पर आरोप लगाए कि अस्पताल में 1900 बिस्तरों को लगाया जाना था, लेकिन सरकार ने पिछले डेढ़ वर्ष में कोई भी काम नहीं किया। उन्होंने कहा कि इसी तरह 7 अन्य परियोजनाओं के जरिए अस्पताल के लिए लगभग 1000 करोड़ रुपए खर्च किए जाने थे, लेकिन प्रदेश सरकार ने लापरवाही दिखाई। नेता प्रतिपक्ष ने बताया कि बिस्तर लगाने का कार्य फरवरी 2022 में ही पूरा किया जाना था, पर दिल्ली सरकार ने अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया है।
मैं गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल दिलशाद गार्डन में खड़ा हूं, जहां 1900 बेडेड ये अस्पताल आईसीयू बनना था, जो अब खंडर के रूप में खड़ा है। पिछले डेढ़ साल से काम बंद है। सरकार ने इससे अपना हाथ खींच लिया है, क्योंकि फरवरी 2022 में इसको पूरा होना था और अब सरकार इसको पूरा करने में इंटरेस्टेड नहीं है। बजट में इसके लिए कोई प्रावधान नहीं रखा है।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज कहा कि 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने के सपने को हासिल करने का एकमात्र माध्यम शिक्षा है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सचिवों के साथ उच्च और तकनीकी शिक्षा पर नई दिल्ली में एक राष्ट्रीय कार्यशाला को संबोधित करते हुए श्री प्रधान ने शिक्षा क्षेत्र के 5 प्रमुख पहलुओं के सुधार पर बल दिया। इनमें बुनियादी ढांचा, नेतृत्व, पाठ्यक्रम, बहुविषयक अनुसंधान और जीवंत परिसर जीवन शामिल हैं।
आज जो कुछ ज्वलंत चैलेंजेस सामने आई है NEP में, इसके बारे में कई प्रकार की सजेशंस दिया गया है। उसके अनुभव क्या आ रहा है, जो कल तक एक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज था, वो सारे धीरे धीरे प्रोफेशनल कोर्स बनते जा रहा है। सॉन्ग, ड्रामा, आर्ट, लिबरल आर्ट, स्पोर्ट्स, गेमिंग, ये सारा पहले बच्चों की एक एडिशनल चीज होती थी, इसे प्रोफेशन बनते जा रहा है। उसको कैसे एक अकेडेमिक फ्रेमवर्क में लाना है, इसके बारे में NEP ने कुछ कहा था।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने युद्ध की बदलती स्थितियों और सुरक्षा खतरों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए अनुकूलित रक्षा रणनीतियों पर जोर दिया है। नई दिल्ली में आज दिल्ली रक्षा वार्ता के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अनुकूलित रक्षा केवल एक रणनीतिक विकल्प नहीं बल्कि एक आवश्यकता है।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस अवसर पर कहा कि अनुकूलित रक्षा को लेकर देश का दृष्टिकोण लचीलेपन, नवाचार और परिवर्तनशीलता पर आधारित होना चाहिए और राष्ट्र को भविष्य की सभी आकस्मिकताओं के लिए तैयार होना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा के खिलाफ युद्ध के खतरे का मुकाबला करने के लिए अनुकूलित रक्षा रणनीतियों को नियोजित करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि सरकार विदेशी आपूर्तिकर्ताओं पर निर्भरता कम करने के उद्देश्य से स्वदेशी क्षमताओं और दक्षताओं को विकसित करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। उन्होंने वर्ष 2029-30 तक रक्षा निर्यात के 50,000 करोड़ रुपए के लक्ष्य तक पहुंचने की आशा व्यक्त की है। प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से जया भारती।
विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने आज नई दिल्ली में केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल डॉ CV आनंद बोस की उपस्थिति में मां मदर नामक पुस्तक का विमोचन किया। ये पुस्तक केरल के राज्यपाल के अपर सचिव डॉ दवेंद्र कुमार धोड़ावत द्वारा लिखी गई है। आज लोक सेवा प्रसारण दिवस है। इस अवसर पर नई दिल्ली के आकाशवाणी भवन में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आज ही के दिन 1947 में महात्मा गांधी का एकमात्र सजीव प्रसारण आकाशवाणी से हुआ था। यह दिवस पूरे देश में सांस्कृतिक विविधता को बढ़ावा देने और शिक्षित करने में आकाशवाणी की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में बताता है।
आज से ठीक 77 साल पहले दिवाली का दिन था, जब महात्मा गांधी को बंटवारे के बाद विस्थापित हुए लोगों से मिलने कुरुक्षेत्र जाना था और वो किसी कारणवश नहीं जा सके। राष्ट्रपिता ने तय किया कि वे रेडियो के माध्यम से इन विस्थापितों को अपना संदेश देंगे। फिर उसी दिन गांधी जी का पहला और अंतिम जीवंत रेडियो प्रसारण आकाशवाणी दिल्ली के स्टूडियो से हुआ। मेरे दुखी भाइयों और बहनों कहते हुए महात्मा गांधी ने अपना संबोधन शुरू किया।
मेरे दुखी भाइयों और बहनों, मुझे कोई पता नहीं है कि सिवाय आपके मुझको कोई भी सुनता है या नहीं। मैं तो एक अनजान पुरुष हूँ, मैं कोई दिलचस्पी भी नहीं लेता हूँ, लेकिन दुख के साथ मिल जाना वो तो मेरा जीवन भर का प्रयत्न है, जीवन भर का मेरा पेशा है।
बापू रेडियो को एक दिव्य शक्ति के रूप में देखते थे। दिवाकर के साथ अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
इस अवसर पर प्रसार भारती के अध्यक्ष नवनीत कुमार सहगल ने राष्ट्र के प्रति महात्मा गांधी की वचनबद्धता के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी के संदेश ने सभी को सबके भले के लिए सोचने के उद्देश्य से प्रेरित किया है।
महात्मा गांधी के शब्दों को सुनकर दोनों चीजें परिलक्षित हुई और उनका संदेश सुनकर आज भी हम सबको जो उनका संदेश है, एक रहकर साथ रहकर सबके हित में सोचने के लिए, सबके विकास के काम करने के लिए प्रेरित करता है।
कार्यक्रम के दौरान आकाशवाणी की महानिदेशक डॉक्टर प्रज्ञा पालीवाल गौड़, दूरदर्शन की महानिदेशक कंचन प्रसाद और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे। दिल्ली विकास प्राधिकरण यमुना के वासुदेव घाट पर कल दीपोत्सव पर्व का आयोजन करेगा। इसमें पहली बार 3.5 लाख से अधिक दीप प्रज्वलित किए जाएंगे। दिल्ली दीपोत्सव नामक इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राजधानी के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना होंगे और इसकी शुरुआत शाम 5:30 बजे होगी। उपराज्यपाल कार्यालय ने बताया कि दिव्यता और भव्यता का एक अलौकिक उत्सव है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। दिल्ली हाट में आज से शिल्प समागम मेला 2024 शुरू हो गया है। इस मेले का आयोजन केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय कर रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये मेला 15 नवंबर तक चलेगा।
शिल्प समागम मेला 2024 भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विविधता का उदाहरण है, जिसमें 16 राज्यों के कारीगरों ने 105 स्टॉलों को लगाया है। प्रत्येक स्टॉल अद्वितीय और पारंपरिक हस्तशिल्प कला का प्रदर्शन करता है, जो उनकी क्षेत्रीय विरासत को दर्शाता है। धातु शिल्प, लकड़ी की कलाकृतियां, बेत और बांस के उत्पाद, मिट्टी के बर्तन, वस्त्र के माध्यम से मेला न केवल भारत की विविध कलात्मक परंपराओं को उजागर करता है, बल्कि सभी पृष्ठभूमि और क्षेत्रों के कारीगरों को एक साझा मंच प्रदान करके एकता की भावना को भी बढ़ावा देता है। सुमित की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए अमन यादव।
दिल्ली नगर निगम ने विश्व उर्दू दिवस के मौके पर पहली बार उर्दू भाषा को प्रोत्साहित करने के लिए केदारनाथ साहनी सभागार में आज मुशायरे और कवि सम्मेलन का आयोजन किया। इस आयोजन में कई शायरों और कवियों ने भाग लिया। इस अवसर पर डिप्टी मेयर आले इकबाल मोहम्मद और पार्षद नाजिया दानिश ने भी भाग लिया। गृह मंत्रालय ने केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF की पहली महिला बटालियन बनाने की मंजूरी दी है। यह निर्णय महिलाओं को सशक्त बनाने और राष्ट्रीय सुरक्षा में उनकी भूमिका बढ़ाने के उद्देश्य से लिया गया है। 53वें CISF दिवस समारोह के अवसर पर गृह मंत्री अमित शाह के निर्देश के बाद बल में महिला बटालियन बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि महिला बटालियन के बनने से देशभर की युवा महिलाओं को CISF में शामिल होने और देश की सेवा करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। CISF मुख्यालय ने नई बटालियन के मुख्यालय के लिए प्रारंभिक भर्ती, प्रशिक्षण और स्थान के चयन की तैयारी शुरू कर दी है। देश का शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह इस वित्तीय वर्ष में अब तक 15.41% की वृद्धि के साथ 12,10,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अनुसार इस वर्ष 1 अप्रैल से 10 नवंबर की अवधि के दौरान रिफंड के समायोजन से पहले सकल प्रत्यक्ष कर संग्रह 21.2% बढ़कर 15 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। राजधानी दिल्ली में आज मौसम साफ रहा। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान सामान्य से 4 डिग्री अधिक 32.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं न्यूनतम तापमान सामान्य से 4 डिग्री अधिक 17.2 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में आमतौर पर मौसम साफ रहेगा। सुबह के समय हल्की धुंध छाए रहने की संभावना है। वहीं कल का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। भाजपा सांसद रामबीर सिंह विधोड़ी ने मुंबई बड़ौदा हाईवे को जोड़ने वाले 12 लेन के राष्ट्रीय राजमार्ग को हरी झंडी दिखाकर जनता को समर्पित किया। दिल्ली में वायु प्रदूषण को लेकर सरकार ने शीतकालीन एक्शन प्लान के तहत इलेक्ट्रिक हीटर वितरण अभियान शुरू किया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने उच्च और तकनीकी शिक्षा पर नई दिल्ली में एक राष्ट्रीय कार्यशाला को संबोधित किया। लोक सेवा प्रसारण दिवस के अवसर पर नई दिल्ली के आकाशवाणी भवन में आज विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया और दिल्ली हाट में शिल्प समागम मेले की शुरुआत हुई। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।